चलिए आगे चलते हैं। रुकू नंबर 8 आयत नंबर 148 सूरत अल आराफ। वत्तखज़ कौम मूसा मिन बादिही मिन हुलियहिम इजला इजलन जसदल लहू खुवार। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इनके बाद अपने जेवरों का एक बछड़ा माबूद ठहरा लिया जो कि एक कालिब था, इसमें एक आवाज थी। क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि वो इनसे बात नहीं करता और ना इनको कोई राह बताता है। इसको उन्होंने माबूद करार दिया और बड़ी बेइंसाफी का काम किया। और जब वो नादिम हुए और मालूम हुआ कि वाकई वो लोग गुमराही में पड़ गए तो कहने लगे, अगर हमारा रब हम पर रहम न करे और हमारा गुनाह माफ न करे तो हम बिल्कुल गए गुजरे हो जाएंगे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ वापस आए गुस्से और रंज में भरे हुए तो फरमाया कि तुमने मेरे बाद बड़ी गलत जानशीनी की कि अपने रब के हुक्म से पहले ही तुमने जल्दबाजी कर ली और जल्दी से तख्तियां एक तरफ रखी और अपने भाई का सर पकड़कर इनको अपनी तरफ घसीटने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी माँ जाए, इन लोगों ने मुझको बेहकीकत समझा और करीब था कि मुझको कत्ल कर डालें, तो तुम मुझ पर दुश्मनों को मत हंसाओ और मुझको इन जालिमों के ज़िमन में मत शुमार करो। قال رب اغفر لي ولي اخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मेरी खता माफ़ फरमा और मेरे भाई की भी, और हम दोनों को अपनी रहमत में दाखिल फरमा, और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। ये तरकू नंबर 8, इसका उन्वान क्या है? बुलंदी से पस्ती का सफर। वो लोग जो कल तक बुलंद थे आज पस्त हो गए। इसमें इब्तदा में हमने बनी इसराइल का बछड़े को माबूद बनाने का रवैया देखा कि जेवरात को पिघला के बछड़ा बना और उसके आगे उस बैठ गए, उसको इबादत करने लगे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे इसकी खबर दी, लिहाजा गुस्सा आया, तौरात की तख्तियां साथ लेके आए, लेकिन जब अपनी आंखों से उनको इस शिर्क में मुब्तला देखा तो खुद पे काबू ना पा सके, हाथ से तख्तियां गिराई और वो टूट गई। और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को, जिनको पीछे नामजद करके गए थे, उनसे सख्त बाजपुरस की। और लिहाजा जब उन्होंने बताया कि इन लोगों ने मेरी बात को नहीं माना तो फिर उनका गुस्सा दूर हुआ और फिर न सिर्फ ये कि अपने लिए बल्कि अपने भाई के लिए भी दुआ करने लगे। इस पूरे में हमारे लिए बहुत सारे दर्स हैं। पहली बात तो ये है कि शिर्क नहीं करना। कोई बात कितनी भी चमकती हुई क्यों ना लगे, उसको इख्तियार करते हुए मुशरिकों में अपना नाम नहीं लिखाना। कुछ रसूमात बड़ी खूबसूरत लगती हैं। आज भी मैं देखती हूँ कि लोग इंडियन मूवीज़ के अंदर कुछ हिंदू कल्चर की चीज़ें देखते हैं और उससे मुतासर होने लगते हैं और उसकी रूह को समझे बगैर उसको इख्तियार कर लेते हैं फैशन के नाम पे या कल्चर के नाम पे। ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। ये जो इनका शिर्क था, ये क्या था कि इन्होंने एक गाय को देखा पूजा करते हुए और इन्होंने भी उसकी पूजा शुरू कर दी। इसी तरह बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ ये सब कुछ होने लगता है कि जब हम गैरों की बहुत तकलीद करते हैं तो हमारे अंदर भी वो चीज़ें आने लगती हैं। वो कुछ भी करें, हमारे पास भी वो चंद ही दिन के अंदर होने लगे। कोई बताने लगा कि किसी जगह में शादी में थे लोग, तो बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, तो बच्चा बार बार पूछ रहा है, मम्मी शादी कब होगी, मम्मी शादी कब होगी। तो माँ कह रही है, बेटा शादी तो है, शादी में तो आए हैं। तो कहने लगा कि नहीं, अभी तो दूल्हा और दुल्हन ने आग के गिर्द फेरे नहीं लिए, चक्कर नहीं लगाए, तो शादी कैसे होगी। अब आप जानते हैं कि इंडियन कल्चर में है, हर मेरा नहीं ख्याल कोई मूवी में ये मंजर ना दिखाया जाता हो, तो ये एक बहुत ज्यादा आंखें खोलने वाली बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कल्चर दिखाते दिखाते हम भी अपने बच्चों को उसी तरफ ले जाएं, रसूमात के नाम पे या फिर ट्रेडिशंस के नाम पे। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और चीज़ है जो हमने इस रुकू में देखी, और वो क्या है कि जब आप किसी को कोई जिम्मेदारी दें तो फिर उससे जवाबदेही भी करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को जिम्मेदारी दी थी, बाद में आके पूछा, बज़ाहर सख्त लफ्ज लगे लेकिन ये उनका हक था, इसलिए कि शिर्क को देख के कोई साहिब ईमान शख्स जो है वो अपने आप को बाकी नहीं रख सकता। لہٰذا ذمہ داری کا احساس یا اس کو لینا، لیکن بعد میں اس کا جواب دینا اور اس کی رپورٹ دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی کام کو کرنے کے اندر بہت معاونت ہوتی ہے. ورنہ اگر ذمہ داری دینے والے کو خود ہی نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے تو پھر بات اس کے عمل میں یعنی اس کے علم میں نہیں آتی. پھر اسی طرح ہم نے ایک اور چیز دیکھی، وہ کیا ہے کہ بھائی جب بھائی سے لڑتا ہے تو دشمن خوش ہوتا ہے. وَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، میرے ساتھ دشمنوں کو خوش نہ کر. آج جب مسلمان مسلمان سے لڑتا ہے تو واللہ ہی دشمن خوش ہوتے ہیں. بظاہر وہ آپ کی مدد کرنے کو آئیں گے، لیکن گھر میں جا کے خوشیاں مناتے ہوں گے، دیکھو فلاں مسلمان ملک فلاں مسلمان سے لڑا، فلاں مسلمان ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے دوسرے مسلمان سے لڑے. تو لہٰذا ہم نے لوگوں کو ہنسنے کا موقع نہیں دینا. ایک دعا بھی بڑی پیاری ہے جس میں اسے ملتے جلتے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ میری حالت ویسی نہ بنا کہ میرے دشمن خوش ہو جائیں. اللہم انی، جی پڑھیے، آتی ہے آپ کو دعا؟ کس کو آتی ہے یہ دعا جس میں یہ آتا ہے کہ ولا تشمت بھی آدائی؟ کچھ اب ایک سٹریچ میں تھا تو مجھے بھی ذہن سے نکل گئی. اللہم انی اعوذ بکا من جهد البلائی و درق الشقائی و سوء القضائی و شماتت الاعدائی. مجھے اس دعا سے بہت فائدہ ہوا. یعنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ دعائیں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو زندگی میں کئی لمحے ایسے آتے ہیں کہ جس میں وہ اس کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ، یعنی انشاءاللہ کسی وقت اس کا ترجمہ بتائیں گے. آج دیکھتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں کون سی دعا ہے. آگے چلتے ہیں رکوع نمبر 9. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. بے شک جن لوگوں نے گائے کی پرستش کی ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اور اس دنیاوی غضب اور ذلت اس دنیا کی زندگی میں ہی پڑے گی، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، تو تمہارا رب اس گناہ توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ ان تختیوں کو لے کر اٹھا لیا، اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی. اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے اپنے وقت معین کے لیے منتخب کیے. بس جب وہ ان سب کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا. کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے. ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے. تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، بس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا خُدْنَا إِلَيْكَ. اور ہم ان لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک خالی لکھ دیتے ہیں، ہم دنیا میں بھی ان لوگوں کے نام نیک حالی لکھ دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے. تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی، اور وہ لوگ جو رسول نبی کی پیر اور وہ لوگ جو نبی امی کا اتباع کرتے ہیں، ان کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. وہ ان کو نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں. اور ان لوگوں پر وہ بوجھ اور توک تھے ان کو دور کرتے ہیں. سو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا، ایسے ہی لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں. رکو نمبر 9, اس کا عنوان کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ. کیا ہے فیصلہ اللہ کا؟ ہمیں مختلف طرح کے فیصلے دکھے اس میں. کیسے؟ ایک اللہ کا فیصلہ تھا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا. دو فیصلے تھے ان کے لیے. کیا؟ نمبر 1, اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے. دوسرا فیصلہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو برے عمل کرتے ہیں, پھر توبہ کر کے ایمان لے آئیں, تو اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ کہ ان سے درگزر فرماتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جسے چاہے اللہ سزا دے لیکن اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے. چوتھی چیز, ہم نے اس میں تین طرح کے لوگ دیکھے جن پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. کل میں نے آپ کو ایک لسٹ دی تھی ان لوگوں کی جن پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ان تین کو اس میں سے ڈھونڈیے گا, مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. نہ ملیں تو جمع کر لیں اسی کے اندر. اور وہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں سے ڈریں, زکوٰۃ دیں, آیات پر ایمان لائیں, یہ تین لوگ اللہ کی رحمت لیتے ہیں. کیا واقعی ہم ان تین طرح کے لوگوں میں ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ہیں ان کے لیے اپنی رحمت کو عام کرتے ہیں, جو اللہ کے نبی پر ایمان لائیں گے, اس کتاب کی پیروی کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر دوبارہ کیا کہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تورات کو پکڑا. یہ تھے وہ 10 کمانڈمنٹس جو اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے, اور لوگوں نے کہا ہم تو اس کو نہیں مانیں گے. لہٰذا موسیٰ دوبارہ گئے اور اپنے ساتھ 70 سرداروں کو لے گئے, جو بڑے علم والے تھے ان میں سے, کہ لاؤ ان کو ساتھ چلو اور تم اپنی آنکھوں سے تورات کو نازل ہوتا ہوا دیکھو. لیکن انہوں نے جا کر پھر وہاں کچھ اور ہی گل کھلایا. کہنے لگے صرف آواز نہیں سنیں گے بلکہ اللہ کو دیکھیں گے بھی. اس بات پہ آسمان سے بجلی گری, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کہا اللہ تعالیٰ, بلکہ مر گئی ہے, ان کو موت آ گئی, اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ زندہ کیے گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ نشانیاں بھی دکھاتا ہے, سب کچھ بتاتا ہے, لیکن لوگ ان نشانیوں سے فائدہ نہیں لیتے. ہم نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے, ان کو تقویت دینی ہے, اور اس قرآن پر عمل کرنا ہے جو ان کے ذریعے ہم تک پہنچا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے, یعنی آج ہمارے ہاتھوں میں یہ قرآن دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اس کے ساتھ بہترین عمل والا بنا دے. چلیے رکوع نمبر 10 دیکھتے ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو, میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر, جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر یقین ایمان رکھتے ہیں, اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق فیصلے کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے, اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر دیا کہ الگ الگ جماعتیں مقرر کر دیں. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو, وہاں واپس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر شخص نے اپنے پینے کا جگہ معلوم کر لی, اور پھر ہم نے ان پر ابر کے سائے کیے اور ان کو من اور سلوا پہنچایا, اور کہا کھاؤ نفیس چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں, اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا اور لیکن اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اور پیو, کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت رکھتے ہو, اور زبان سے یہ کہتے رہنا کہ توبہ ہے, اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا, ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید ہم اور دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ जो खिलाफ था इस कलमे के जिसकी इनसे फरमाइश की गई थी। इस पर हमने एक आसमान से आफत भेजी इस वजह से कि वो हुक्म को जाया करते थे। तो ये था रुकू नंबर 10। इसका उन्वान क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहि सलाम के हालात में मुमासलत। आपने देखा कि इब्तदा रुकू की कैसे हुई कि नबी सल्लम का जिक्र हुआ। पांच बातें उस नाते से हमें पता चली। नंबर एक कि नबी सल्लम सारी इंसानियत के लिए नबी हैं, इसीलिए तो आज फिर हर एक को मुसलमान होने की दावत दी जाती है। दूसरी बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से पैगंबर बना के भेजे गए। तीसरी चीज ये मालूम हुई कि अल्लाह पर ईमान लाना है, यानी ईमान लाओ अल्लाह पर और उस नबी उम्मी पर। अनपढ़ कहा गया नबी सल्लम को यहाँ, यानी ये कोई ऐब की बात नहीं कि इंसान को दुनियावी इल्म ना आता हो और उसके बावजूद भी उसको कुरान समझ आ जाए। और तीसरी चौथी चीज जो हमने देखी इसमें वो क्या है कि इनकी पैरवी इख्तियार करो, नबी की पैरवी का हुक्म दिया गया ताकि इंसान हिदायत पा ले। इसके बाद आपने फौरन देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आ गया। असल में अल्लाह ताला नबी सल्लम की जिंदगी और मूसा की जिंदगी के अंदर एक रब्त जो है उसको सामने लाना चाहते हैं कि जिस तरह नबी सल्लम को लोगों ने झुठलाया इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम को झुठलाया। आपने कौम मूसा के बारे में दो बार यानी कई बातें पढ़ी जिसमें उनकी ऊपर जो मुख्तलिफ नेमतें हुई थी उसका जिक्र गुजरा, मनोसलवा और इसी तरह की आप अगर लिस्ट बना लें, पीछे भी बनी थी इसी आयत नंबर 160 के पॉइंट्स लिख लेंगे तो आपके पास वो सारी चीज़ें बनेंगी। लेकिन आखिर में कहा क्या था कि जब अल्लाह ताला तुम्हें फतह दे दे तो उस बस्ती में आजजी के साथ जाना और सजदा करते हुए जाना और अपने गुनाहों से बख्शिश तलब करना। लेकिन इन लोगों ने इन सारी बातों का मजाक उड़ाया, सजदे की बजाय सीढ़ी के बल चलने लगे, जैसे एक बच्चा जमीन पे बैठ के घिसटता है अपनी जगह पे, इस तरह करने लगे। और ऐसा क्यों करते थे? फन, मजाक उड़ाते थे। अच्छा, सजदा क्यों करें, हम नीचे क्यों करें, फिर हमें दिखेगा नहीं, तमाशा करते थे। हित्तातुन कहा तो हिंदतुन कहने लगे, दाना बाली में है, दाना बाली में है। दिल में वो मोहब्बत आई हुई थी जमीन से कुछ अनाज लेने की, लिहाजा उन्होंने नाशुक्री का रवैया अख्तियार किया। अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, जो नहीं मानता वो ना माने। अल्लाह ने ऐसा अजाब दिया, ताउन का अजाब आया इन पे उस बस्ती को पाने से पहले, और इस तरह ये अल्लाह ताला के अजाबों का शिकार हुए। हमारे अमल की बात क्या है? पहली बात ये कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर मानना है और उन तमाम चीज़ों पर यकीन रखना है जिसका तذکرہ इन आयतों में किया गया। अल्लाह ताला के रब होने पे और उसके ज़िंदगी और मौत पे कादिर होने का यकीन रखना है। इसी तरह हमने पाक चीज़ों को खाना है, आजजी इख्तियार करनी है, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करनी है। और जब अल्लाह ताला कोई कामयाबी दे दे तो हाय हुर्रा के नारे नहीं लगाने बल्कि अल्लाह हू अकबर, अल्लाह ताला बड़ा है और वो सब कुछ करता है। और ये वो वक्त है कि जब फिर वो लोग वाकई 40 साल के बाद बैतुल मक़दस को फतह करके उस शहर में दाखिल हो रहे थे, तो ये उस वक्त के यानी हिदायात हैं और उसकी यहाँ जिक्र है। तो बात असल यही है कि वो लोग जो अल्लाह की बातों को नहीं मानते वो दुनिया में भी अल्लाह के अजाबों का शिकार होते हैं और आखरत का अजाब तो फिर होगा ही। चलिए रुकू नंबर 11 आयत नंबर 163 से। वस अलहुम अनिल करियतिल्लती कानत हादिरतुल बहर। और आप इन लोगों से इस बस्ती वालों का जो के दरिया के करीब आबाद थे उस वक्त का हाल पूछिए जबकि वो हफ्ते के बारे में हद से निकल रहे थे, जबकि इनके हफ्ते के रोज तो इनकी मछलियां जाहिर हो होकर इनके सामने आती थीं, और जब हफ्ते का दिन ना होता तो इनके सामने ना आती थीं। हम इनकी इस तरह पर आजमाइश करते थे इस सबब से कि वो बेहुक्मी किया करते थे। वइस कालत उम्मतुम मिन्हुम लिमतअइज़ूना कौमा। और जबकि इनमें से एक कौम ने यूं कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह ताला बिल्कुल हलाक करने वाला है या इनको सख्त सजा देने वाला है। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे रब के रूबरू उजर करने के लिए, शायद के वो डर जाएं। सो जब वो इसको भूल गए जो उनको समझाया जाता था, तो हमने इन लोगों को तो बचा लिया जो इस बुरी आदत से मना किया करते थे, और इन लोगों को जो कि ज्यादती करते थे एक सख्त अजाब में पकड़ लिया इस वजह से कि वो बेहुक्मी किया करते थे। فَلَمَّا عَتَوْمَ أَمَّا نُهُوا أَنْ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَوْسِئِينَ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم ذلیل بندر ہو جاؤ اور وہ وقت بھی یاد کرنا چاہیے جبکہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت سزا کی تکلیف پہنچاتا رہے گا بلا شبہ آپ کا رب جلدی ہی سزا دیتا ہے اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح کے تھے اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باس آ جائیں فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا اور وہ اس دنیا فانی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال و متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے کیا ان لوگوں سے اس کتاب کے مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سوائے حق بات کے اور کسی بات کی نسبت یہ نہ کریں انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں پھر کیا تم نہیں سمجھتے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا اور کہا جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی سے قبول کر لو اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ یہ تھا رکوع نمبر 11 اس کا عنوان کیا ہے ہیلہ سازی اس میں آپ نے دیکھا کہ ابتدا میں ہی واقعہ ثبت ہے اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا اصل میں جس طرح آج جمعہ کا دن ہمارے لیے معتبر ہے ہمیں تو جمعہ کی نماز کے بعد اجازت ہے کاروبار کرنے کی دکان کھولنے کی لیکن یہود کے اندر ہفتے کا پورا دن ہی ہولی ڈے تھا اس میں عبادت نہیں کر سکتے تھے اسی طرح کا حکم تھا اور ایک بستی جو دریا کے کنارے تھی لوگوں کا معاش کا پورا ذریعہ جو تھی وہ فشنگ تھی اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کی کہ ہفتے کے دن بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ جن کے ایمان کمزور تھے ان کے دل میں لالچ پیدا ہوا کہ ہم اس دن مچھلیوں کو لیں اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیشہ ہی حرام کام میں بظاہر بڑی کثرت دکھتی ہے اور نماز کے وقت میں ضرور گاہک آئیں گے جو سارا دن نہیں آتے وہ اس وقت آئیں گے یہ ایک امتحان ہوتا ہے انسان کا اب کچھ دن تو یہ صبر کرتے رہے اور ظاہراً حکم توڑنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ لوگ ظاہر مخالف ہو جائیں گے بھی اور اللہ کے حکموں کو ظاہراً اور کھلے عام تو بہت کم لوگ توڑتے ہیں ضرورت نہیں ہوتی لیکن انہوں نے ایک ہیلہ سوچا اور وہ ہیلہ کیا تھا کہ جمعے کی رات کو جاتے یعنی ہفتے سے پہلے تو وہاں جال لگا دیتے اور ہفتے کے سارا دن اس جال میں مچھلیاں آتی رہتی جب شام ہوتی تو مطلب رات کے وقت جا کے مچھلیاں لے آتے اور اس کو پکاتے کھاتے جو بھی ہوتا اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایسا کام کر رہے ہیں تو ان کو منع کیا تو کہنے لگے کہ دیکھو ہفتے کے دن تو ہم نے کچھ نہیں کیا جمعے کو جال لگایا اتوار کی رات کو جا کے لے آئے ہم نے تو کچھ نہیں کیا ये बात पे उस कौम के अंदर तीन गिरोह बन गए। एक वो था जो ये काम करते थे, दूसरे वो थे जो ये काम नहीं करते थे लेकिन मना करते थे कि ऐसा ना करो, ये तो अल्लाह के हुक्म की रूह को ख़त्म करने वाली बात है, और तीसरी वो लोग थे जो ना करते थे ना कुछ बुरा कहते थे कि ठीक है जी सबको पता है, हर एक को पता है हम क्यों बुरे बने। अल्लाह ताला ने जब चाहा उनके ऊपर अजाब आना था, और बाज़ रिवायतों में आता है कि इन लोगों ने बीच में दीवार बना ली थी, वो लोग जो खुद नहीं करते थे मना भी करते थे, उन्होंने अपनी और इनके बीच में एक दीवार बना ली कि कहीं अल्लाह का अजाब ना आए और हम भी उसकी पकड़ में आ जाएं। तो वही हुआ कि उनके ऊपर अल्लाह ताला ने उनकी शक्लें बंदर की बना दी। जब वो बंदर के बने, बंदर की शक्लें बनी, तो इन लोगों ने देखा कि सारा दिन कोई बाहर नहीं आया, बाद में दीवार के दूसरी तरफ देखा तो उस पूरी कौम की शक्लें जो थी वो बंदर की बन चुकी थी। शक्लें बंदर की थी, दिमाग इंसान के थे, बात समझते थे, सुनते थे, बास की आंखों में आंसू देखे गए, और बास जब उनको जाके कहते कि क्या हमने तुमको कहा ना था, तो सर हिलाते थे कि हाँ। फिर तीन दिन के बाद उन लोगों की सबकी मौत हो गई, क्योंकि जब भी किसी कौम के ऊपर अल्लाह के अजाब आते हैं तो वो तीन दिन से ज़्यादा नहीं बचते। लिहाजा अगर आज ये कहा जाता है कि वो लोग जो आज बंदर हैं ये उन्हीं की औलाद है, तो ये दुरुस्त ना होगा और ये इंसानियत की तौहीन होगी कि वो बंदर बन के रहे। हमारे लिए इस वाक़े में बेशुमार बातें हैं, बेशुमार जिसको आप कह लें। देखते हैं कौन कौन सी हैं थोड़ी सी बातें जिसको हम कर सकें। नंबर एक, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। दूसरी बात, हराम की कसरत ही क्यों ना हो उसकी तरफ निगाह उठा के नहीं देखना। हराम काम आसान ही क्यों ना हो उसको नहीं करना। ऐसी चीज को अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझना। कोई बुराई करे तो उसको रोकना है, रोकने पे ना रुकें तो उनसे कतई ताल्लुक ही है ताकि अजाबों से बच सकें। लोगों को नसीहत करनी है दो वजूहात की बुनियाद पे। नंबर एक, ताकि हुज्जत तमाम हो जाए, कल क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला को बता सकें कि हमने तो मना किया था लेकिन ये रुके नहीं। और दूसरी वजह यह है कि शायद कोई मान जाए, यानी दिल में तड़प हो और आजजी हो कि वाकई इन लोगों की ये बात हो। फिर अगली बात यह है कि तावीलात नहीं करनी। अल्लाह ने इनकी शक्ल बंदर की क्यों बनाई? क्योंकि बंदर इंसान से मिलती जुलती मखलूक है। इन्होंने भी अल्लाह के हुक्म से मिलता जुलता हुक्म निकाला था, और बंदर बहुत कॉपी करता है ना। हमें बंदर नहीं बनना। कोई है हम में से जो बंदर बनना चाहे? तो बंदर क्या करता है? कॉपी करता है, दूसरों को कॉपी करता है। तो फिर हमने दूसरों को कॉपी नहीं करना। एक बड़ी अच्छी सीडी है आर यू मंकी, तो उसमें उन्होंने मुसलमानों के सारे वो रवैये बताए हैं कि जो हम बगैर सोचे गैरों की तकलीद कर रहे हैं, जो कोई कर रहा है हम भी वही काम कर रहे हैं ये सोचे बगैर कि उनका दीन कुछ और हमारा। तो वो सवाल करते हैं कि आर यू मंकी? मंकी तो अच्छा लगता है बात देखे और करते हुए, लेकिन इंसान को बहरहाल अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर अगली बात जो इसमें रुकू में कुछ और बनी इसराइल के हालात का जिक्र हुआ, कुछ लोग नेक थे कुछ बद थे उनका तस्करा हुआ। फिर अल्लाह ताला का मुतालबा हमें मालूम हुआ इस आयत में किताब के नाते से, वो क्या है कि किताब को मजबूत पकड़ लो और फिर उम्मीद है कि तुम बच जाओगे। एक चीज जिस पे मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूंगी वो है आयत नंबर 169। देखिए, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، پس ان کے بعد برے لوگ جائے نشین بن گئے، یعنی نبی گزرے، نبیوں کی اولادیں، اچھا دور گزرا تو خراب لوگ سامنے آئے، کیا کرتے تھے وہ؟ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى، وہ اس دنیا کا سامان لے لیا کرتے تھے، کیا سامان لیتے تھے؟ رشوت، دنیا کے کام کے بدلے میں مال لے لیا کرتے تھے لوگوں سے، اور وہ بھی حقیر۔ जब लोग जाके उनको समझाते कि मत करो तो क्या कहते थे, ये है हाईलाइट करने वाला जुमला, वयकुलूना सयुग्फरुलना, अनकरीब वो हमें माफ कर देगा, अल्लाह बड़ा गफूरु रहीम है। ये जुमला सुना है कभी अपने लोगों से? किसी गुनाह पे रोक के देख लें, लोग क्या कहते हैं जी अल्लाह ताला बड़ा माफ करने वाला, वो माफ कर देगा। तो ये जुमला किसका था? बुरे लोगों का। और फिर इसके बाद ये जुमला बोल के फिर क्या होता? वहीं या तुहम अरदुम मिसलुहु, फिर दोबारा अगर वैसा ही फायदा मिलता या खुजूफ, फिर ले लेते। यानी उन्होंने तौबा को मजाक बना रखा था, हमारे अमल की बात क्या है कि हमने कभी भी ऐसा नहीं करना। ये गुनाह करके ये कहना कि अल्लाह माफ़ कर देगा, ये अल्लाह के गज़ब को भड़काने वाली बात है। अल्लाह की रहमत तो कुछ और ही लोगों पे आती है, हमें वो लोग बनने की कोशिश करनी है। चलिए रुकू नंबर 12 पे चलते हैं। वइस अखज़ा रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम वअशहदहुम अला अन्फुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين। और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उन्हीं के मुतल्लिक इकरार किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं। ताकि तुम लोग क्यामत के रोज यूं न कहो कि हम तो इससे महज बेखबर थे, या यूं कहो कि पहले पहले शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया और हम इनके बाद इनकी नस्ल से हुए। सो क्या इन गलत रास्तों पे चलने वालों के फेल पर तू हमको हलाकत में डालेगा? हम इसी तरह आयात को साफ साफ बयान करते हैं ताकि वो बाज आ जाएं। वतलु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना فانسلخ منها। इन लोगों को इस शख्स का हाल पढ़ सुनाइए जिसको हमने अपनी आयतें दी, फिर वो इनसे बिल्कुल ही निकल गया, फिर शैतान इसके पीछे लग गया, सो वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया। और अगर हम चाहते तो इसको इन आयतों की बदौलत बुलंद मर्तबा कर देते, लेकिन वो तो दुनिया ही की तरफ माइल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा। सो इसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि अगर तू इस पर हमला करे तब भी हांपे, या इसको छोड़ दे तब भी हांपे। यही हालत इन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को छुटलाया। बस आप इस हाल को बयान कर दीजिए, शायद वो लोग कुछ सोचें। सा मसलन القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون। इन लोगों की हालत बहुत बुरी है जो हमारी आयतों को छुटलाते हैं और वो अपना ही नुकसान करते हैं। हकीकत क्या है कि जिसको अल्लाह हिदायत करता है बस वही हिदायत पाने वाला है, और जिसको वो गुमराह कर दे सो ऐसे ही लोग खसारे में पड़े हुए हैं। وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ। اور ہم نے ایسے بہت سے جن और इंसान दोजख के लिए पैदा किए हैं जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे देख समझते नहीं, जिनकी आंखें ऐसी हैं जिनसे देखते नहीं, जिनके कान ऐसे हैं जिनसे सुनते नहीं। ये लोग चौपाइयों की तरह हैं, बल्कि ये इससे भी ज़्यादा गुमराह हैं और यही लोग गाफिल हैं। तर सारे इन लोगों पे وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا। और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, सो इन नामों से अल्लाह को याद करो, और ऐसे लोगों से ताल्लुक भी ना रखो जो इसके नामों में कजरवी करते हैं। इन लोगों को इनके किए की ज़रूर सज़ा मिलेगी। और हमारी मखलूक में एक जमात ऐसी भी है जो हक के मुताबिक हिदायत करती है और इसके मुवाफिक इंसाफ भी करती है। रुकू नंबर 12, इसका उन्वान क्या है, फितरी अहद और इससे इनहराफ। इब्तदा में आपने उस अहद का जिक्र किया जो कई दफा आपको तस्करा किया गया। फितरी अहद है, वादे अलस कहते हैं इसको। अल्लाह ताला ने बनी आदम को हजरत आदम की पुश्त में से उनकी रूहों को पैदा किया था बिल्कुल इब्तदा दुनिया के वक्त में, और उस वक़्त फिर उनके साथ ये अहद किया गया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। हम सब ने यह अहद किया कि वाकई अल्लाह हम तुझे ही रब मानेंगे, और फिर रब के सारे तकासे भी ये नहीं कि हाँ जुबान से तो कह दें रब है अल्लाह है और बाकी वो सारी उसकी सिफात दूसरों में ढूंढने लगे। तो अल्लाह ताला ने ये हम पे हुज्जत तमाम की। इसमें हमें दो बातें बताई गई कि अहद का मकसद क्या था। दिल में सवाल आता है ना, ऐसा क्यों हुआ। पहली बात तो क्या थी कि हुज्जत तमाम करनी थी। हर इंसान के पास जिंदगी में हो सकता है कि हिदायत का पैगाम बराह रास्त ना पहुंचे, किसी जंगल में पैदा हो जाए, किसी जजीरे में हो, कोई उसको ना बताए रब कौन है, अल्लाह कौन है, रसूल कौन है। तो कल कयामत के दिन इसी वादे अलस की बुनियाद पे उससे सवाल होगा कि तेरे लाशऊर में तो ये था। ये है कैसे, मुझे लगता है जैसे आप लोग कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते हैं, बड़ी से बड़ी चीजें आप प्रोग्रामिंग करके डाल देते हैं, फिर आप सो जाएं आपका कंप्यूटर काम करता रहता है, उसके अंदर वो फीट चली हो जाती, फीट जैसे कहते हैं ना कि उसके डाटे में चली गई वो बात। हम सबके जहनों में अल्लाह ताला ने तौहीद को बनाया डाला और फिर हमें उसके मुताबिक हमारे जिस्म को तैयार कर दिया। दुनिया में आने के बाद इंसान फिर कभी गाफिल होता है, कभी नहीं पता चलता, लेकिन ये चीज़ उसकी रहनुमाई करती है। अगर आप ये समझ लेना, बास लोग एक सवाल करते हैं जिसका जवाब है इस आयत में, और वो क्या करते हैं, आपके बच्चे ही करते होंगे कभी आपसे, कि चूंकि हम तो मुसलमान घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान हैं, तो हमारे उस दोस्त का क्या कसूर है जो किसी काफिर घर में पैदा हुआ, फिर उसको क्यों गुनाह, उसको क्यों कहा जा रहा है कि इस्लाम कबूल करे। ये बड़ा मशहूर सवाल है। तो इसकी बुनियाद पे याद रखिए कि अल्लाह की तरफ बुलाने के तीन बड़े सोर्सेज हैं। नंबर एक, यही फितरत, जबिल्लत। हर बच्चा जो काफिर घर में है या मुसलमान है, मुसलमान में है या किसी और बेदीन घर में है, उसकी जबिल्लत में, इंस्टिंक्ट में ये बात डाल दी गई कि अल्लाह एक है। इसमें सब यक्स हैं, कोई कमी नहीं, औरतें और मर्द में इसमें कोई तख्सीस नहीं। दूसरी चीज क्या है इंसान को जो इस चीज की तरफ लेके जाती है, विजडम, अकल। जब इंसान इस कायनात पे गौर डालता है ना, गौर करता है, तो उसकी अकल बताती है कि इसको बनाने वाला कोई है। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये बातिल नहीं, इनके बनने का कोई मकसद है। इसमें भी सब यकसा है ना, सबको दिए ना अकल, ये तो नहीं दी कि मुसलमान को ज्यादा दी तो काफिर को कम दी। तीसरी चीज होती है रेवलेशन, वही। ठीक है, जो घर मुसलमान घरों में बच्चे पैदा होते हैं वो इस तीसरी चीज में मुमताज हैं कि उनको वही के जरिए इस्लाम दे दिया गया, लेकिन देखा जाए तो ये वही मुख्तलिफ अदवार में हर नबी के जरिए हर कौम पे पहुंची। क्या यहूद के पास वही नहीं आई, क्या नसारा के पास नहीं आई? अब अगर आज उन्होंने तावीलात के सहारे उसको बदल दिया तो फिर उसकी बात उनके जिम्मे है। हाँ, कुछ बेदीन हो सकते हैं, बुद्धा या हिंदू, जो किसी इलामी मजहब को नहीं मानते, लेकिन अगर उन तक बराह रास्त वही नहीं भी पहुंची तो क्या दो फैक्टर काफी नहीं रब को पुकारने के? कई लोग हैं जो काफिर घरों में पैदा होते हैं और इस्लाम पे आ जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जरूरी नहीं कि वही बराह रास्त पहुंचे, और कई क्या हजारों क्या लाखों ऐसे हैं जो वही भी मौजूद है, तीनों सूरतें मौजूद है, फिर रब से दूर है। तो लिहाजा असल बात क्या है कि रब को पहचानना है। हमारे अमल की बात इसमें यही है कि हमने तौहीद पे जमना है और इस फितरी अहद को पूरा करना है। ये बच्चे के साथ दुनिया में आता है, उसको याद होता है। जब बच्चा बोलना शुरू करता है फिर भूलता है। इसीलिए देखिए कि बच्चा फितरत से कितना करीब होता है ना, तो लेकिन बाद में हम गुनाह करते और गलत चीज़ों में दुनिया के अंदर आते हैं तो फिर ये हमें भूल जाता है। फिर दूसरी चीज़, इसमें आपने उस शख्स की मिसाल पढ़ी जिसने फितरत के इस अहद से इनहराफ किया। बहुत ही यानी दिल सोज किस्म की मिसाल है आयत नंबर 175 और उससे आगे। बुनियादी तौर पे ये एक शख्स है जिसको अल्लाह ने इल्म दिया। इल्म वालों की बात है। अल्लाह ने इल्म क्यों दिया था कि वो इसके जरिए हिदायत ले, लोगों को फायदा दे और खुद अपनी जिंदगी को भी सही रखे, लेकिन ये दुनिया के फायदों को पाने के लिए उस इल्म से निकल गया। नतीजा क्या हुआ कि दुनिया का फायदा पाते पाते ख्वाहिश के हाथ लग गया, और फिर उसकी मिसाल कैसी है, कुत्ते की। कुत्ता क्या करता है, लालच और ग्रीडनेस की अलामत है, जुबान लटकाता रहता है। यानी दुनिया के छोटे छोटे फायदों पर इस शख्स की जुबान लटक जाती थी। वो दीन जिसको पा के उसको खुद ही इज्जत मिल जानी थी, थोड़ा सब्र करता तो आजमाइशों के दिन गुजर के खैर के दिन आने वाले थे, वो उसी आजमाइशों पे समझा कि ये दीन तो बड़ा मुश्किल है और पलटा और उन्हीं आयतों को बेच दिया। कैसे बेच दिया, अपने अमल से बेच दिया। यानी इसकी इसकी तलाक दो तरह के लोगों पे, इल्म वाले होने के बावजूद इल्म को मिसयूज करते हैं, ये आयत पढ़ लो तो इतने पैसे, ये वजीफा करोगे तो इतने पैसे। बाद लोग कुरान की आयतों को बेचते हैं, वजीफों की इजाजत नहीं देते जब तक आप उनके हाथ गर्म नहीं करते, और फिर इसी इल्म को दुनिया कमाने का सबब बना लेते हैं। याद रखिए, वो इल्म जिसके बाद दुनिया की तलब पैदा हो गई ना कि इसको सीख के मैंने पैसा कमाना है, वो इल्म रूहानी नहीं रहता। अगर आपको रूहानियत महसूस होती है तो उसकी वजह क्या है कि ये बेलौस कोशिशें हैं। किसी इंसान से एक पाई नहीं लेनी, किसी से तवक्को नहीं करनी, किसी की तरफ नजर भर के नहीं देखना। क्यों? जिस दिन इंसान दूसरे के हाथ से ले लेता है ना, तो उसका हाथ नीचे और दूसरे का ऊपर हो जाता है। उस बंदे की बात जम के हो ही नहीं सकती। जो पेड टीचर होते हैं वो हमेशा आपकी मर्जी की बात करेंगे, वो आपके वक्त पे आएंगे, वो आपकी बातें करेंगे, और बाज दफ़ा अहकाम बदल जाते हैं, हुक्म बदल जाते हैं, फतवे बिकते हैं। लिहाजा दीन का काम कभी भी अल्लाह ताला आपको करने का मौका इससे भी ज़्यादा दे। और मैं आप सबको वही नसीहत करूँगी जो मैं अपने आप को करती हूँ कि कभी ये तवक्को ना रखें कि अपनी ज़ात के लिए लोगों से कुछ लेना है। शुक्रिया भी नहीं, कोई आपको सलाम भी नहीं करे बाद में, कभी बुरा ना माने। आपका काम क्या है कि बहना है। कोई दरिया है तो वो बहता है ना, वो लोगों को कहता है कि पहले बताओ मुझे इसके बदले में क्या दोगे। उसके अंदर आके जो भी हाथ भरता है वो भरता चला जाता है, वो लोगों को बांध बांध के भी नहीं रखता कि देखो ये शर्तें फिर करो। बहते दरिया बनिए, बारिशें बनिए, बदली बरसती है, हर एक फायदा लेता है। वो बरस के आगे पैसे, कभी बिल आया बारिश के बाद, कभी बिल आया आपके नाम पे, या कभी आपको किसी ने कहा कि सूरज निकले अब इसका बिल दे दो। ये दुनिया की जरूरतों के पैसे हम देते हैं, जो हम बिजली पानी गैस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दीन का काम बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। जब आपने किसी से कुछ ले लिया ना तो आप दब गए। अरबी का एक असूल है कि एहसान जुबान को काट देता है। जब किसी शख्स का आप पे एहसान हो जाता है तो फिर उसके नतीजे में क्या है कि आप उसके बारे में यानी एहसान मंद होते हैं तो फिर आपकी जुबान उसके आगे गूंगी हो जाती है। तो लिहाजा बेहतर है कभी किसी के दिल में कोई ख्याल आए, कुछ बातें मुझ तक पहुंची और उसके नाते से ये बात कहूंगी कि कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एडमिन्स, और इनको कुछ गिफ्ट दिया जाए, कोई तोहफे दिए जाएं, तो ऐसे तमाम लोगों के जज्बात काबिले कदर हैं, अल्लाह ताला जज़ा दे। लेकिन हमारी शुरू से ये एक पॉलिसी है कि हमने कभी भी इस नाम पे जाती कुछ नहीं लिया, ना हमें लेना। किसी का बहुत दिल चाहता है इस नेक काम में हिस्सा डालता है, अपनी खुशी से डाल दे। लोगों को कुछ देना है, किसी को करना है, आपको आपकी अमानत होगी, लोगों तक पहुंच जाएगी किसी और खैर के काम में, लेकिन वो किसी की ज़ाती मलकियत चीज ना तोहफे की सूरत में होती है और ना किसी और सूरत में। बाज लोग कहते हैं अच्छा हमें खैर के काम में हिस्सा डालना है, डाल दीजिए, दावा फंड है उसमें डाल दीजिए, आपकी अमानत डल जाएगी। या आपको किसी को तोहफा देना है, बाज दफा कुरान खत्म होता है उसके ऊपर लोग कोई किताब अपनी तरफ से देते हैं कुछ है। लेकिन किसी को जाती तौर पर इस चीज की यानी खालिस खास तौर पर वो चीज है। देखिये तोहफे का एक मियार होता है, वो क्या होता है, जाती ताल्लुकात होते हैं, हम आपको जानते हैं आप हमें जानते हैं। अब जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनमें से तो बहुत सारे लोग हमारी शक्लों को भी नहीं जानते, हमें किसी का नहीं पता। अब अगर वहां से हमें कुछ तोहफे आते हैं तो फिर तकलीफ होती है। तो बहरहाल असल बात क्या है कि जहां दीन में दुनिया का आता है पहले इंसान को मिलता है। आप कहेंगे इतनी सख्ती क्यों, इसकी वजह भी आपको बता दूं कि पहले खुद लोग खुशी से देते हैं, बाद में फिर बंदा तवक्को करने लगता है। आप एक दिन देंगे, दूसरे दिन देंगे, तीसरे दिन देंगे, फिर चौथे दिन तवक्को आने लगती है कि अच्छा अब कोई हमें दे। कोई खुशी से ला के दे देता है, उसने दे दी उसकी खुशी, अल्लाह उसको दे। जिस दिन वो चीज़ आदत बन जाती है ना, तो वो फिर एक किस्म की यही बात होती है कि वो फिर तवक्को होने लगती है। तो ये आयतें पढ़ के तो वाकई दिल हिल जाता है कि जब अल्लाह ने इल्म दुनिया का उसको दिया, वो बेचारे ने उस इल्म से दुनिया ले ली और दीन छोड़ दिया, तो उसकी मिसाल है जैसे लालच की शक्ल बन गया। लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमाया कैसे लोग कैसे हैं। आखिर में कमेंट इतना ज़बरदस्त है इसके बारे में, आयत 179 में, कुछ लोग हैं जो पैदा ही जहन्नम के लिए किए गए, दिल हैं समझते नहीं, दिल काम नहीं कर रहे, आंखें हैं देखती नहीं, कान हैं सुनते नहीं, ये तो जानवरों जैसे, बलहुम अदल, जानवर से भी ज्यादा गुमराह। क्योंकि जानवर को तो फिर अपने रब की पहचान है, इनको तो रब की पहचान भी खत्म हो गई, वो तो फिर मालिक के साथ शिर्क नहीं करता, ये लोग शिर्क करते हैं। लिहाजा हमने इस रुकू को सुनते वक्त अपने दिल के अंदर इन चीज़ों का यकीन करना है। अगर अल्लाह ताला ने हमें अपनी कुछ की आयतें सिखाई हैं, इसको खालिस नीयत के साथ उसके बंदों तक पहुँचाना ये एक अमानत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक जिम्मेदारी है, इसको अदा करना है। दूसरी बात है कि दुनिया के इल्म से, दीन के इल्म से दुनियावी बर्तरी नहीं चाहनी, शोहरत नहीं चाहनी, ये तो गुलामी है, ये तो इतना खौफनाक मोड़ है कि आप सोच नहीं सकते। इसमें कहाँ इस चीज़ का शौक है कि आपको शोहरत चाहिए या आपको बड़ा बनना है। बड़ाई उसको मिलती है जो छोटा बनता है। आपको दुआ भी सिखाई गई थी एक दिन कमिटमेंट में कि अल्लाह मुझे अपनी नज़रों में छोटा और लोगों की नज़रों में बड़ा बना दे। और आजिज़ी मिलती ही उसको, इज्जत उसी को मिलती है जो अल्लाह की नज़रों में आजिज़ बन जाता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करे कि जिनको वाकई जहन्नुम के लिए पैदा किया हो। हम सब को इस आयतों पे वाकई तड़प के अपने लिए दुआ करें कि कहीं ये मेरी बात तो नहीं, और अपना जायज़ा भी लेना है इस आयत की रोशनी में थोड़ा सा, क्या मेरा दिल तफक्कुर का काम कर रहा है, क्या मेरी आंखें देख रही हैं हक को, हक के रास्तों को, क्या मेरे कान हक को सुनते वक्त खुश होते हैं। और फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इससे कुछ और तरफ चली जाऊँ।